आजच्या प्रातः क्लास आहे इकतीस आठ 1965 दिन मंगलवार रिटायर चला है जाग सजनिया जाग कभी लोग जो भी कविता करते भाव भी हो रो करके कविता करते हैं तो भगवान मनोभाव में विभोर होने वाले भक्तों का साथ देते हैं। ये बताने के लिए गीत गाते हो कविता गाते हो उन सब बातों का कनेक्शन मुझे बीज परम पिता परमात्मा से है। सारी मनुष्य शक्ति एक झाड़ है, मैं उसका बीज हूँ। हम बीज प्रदा पिता और बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। बीज कहो, बाप कहो, पति कहो, विश्वपति कहो, इसके लिए गाते भी हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। वो विश्व पिता भी है, जगत पिता भी है। कहते हैं जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। बृहस्पति है जगत गुरु, पतियों का पति है, सभी की आवाज में आवाज निकलती है जाग सजनिया जाग। क्यों जाग? क्योंकि अब ये पुराने दुखदायी सृष्टि कलयुगी खत्म होने वाली है और नई सतयुगी रूपी सवेरा आने वाला है। जय गुरुदेव ने भी क्या नारा दिया, सतयुग आने वाला है और कलयुग जाने वाला है। तो भगवान बाप कहो, आत्मा रूपी सजनियों का पति कहो, क्योंकि ये जितनी भी आत्माएं हैं परम पिता परमात्मा के बच्चे भी हैं, उन सबके सहयोग से ये सारी दुनिया पलटनी है। तो सोचे सोचे पलटनी है या ज्ञान नींद से जागेगी तब पलटेगी? अभी गीत तो बहुत सुनते हैं, इस गीत का अर्थ भी बहुत सहज है, ठीक है ना? जब चेष्टा से बुद्धि में बैठ जाए, क्योंकि ये है शक्ति चक्र के लिए। शक्ति का चक्र है ना, चार सीम का चक्र है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। और कलयुग है अज्ञान नेद का युग, घोर अंधकार फैलता है सारी सृष्टि के मनुष्य को बुद्धि में। बाहर की दुनिया का सारा ज्ञान है, अपनी आत्मा का और आत्मा के बाप का कोई ज्ञान नहीं है। कहते हैं प्रकृति के बीच में चमकता है जब सितारा, यादगार में माताएं बिंदी भी लगाती हैं। प्रकृति के मध्य में पुरुष लोग टीका लगाती है, परंतु जानते नहीं है ये आत्मिक स्मृति में टिकने की निशानी है। आत्मिक स्मृति में टिकेंगे तो जैसे बीज रूप तेज हो गई, सार रूप तेज हो गई, सार में विस्तार को समाया हुआ है। बार बार स्मृति पक्की करने से, अभ्यास पक्की करने से कि मैं अणियान समय है, अनुरूप आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म हूँ, ज्योति हूँ, ज्योति का कण हूँ। और ये आत्मा जो अविनाशी आत्मा है वो चारों युगों में कैसे चक्कर लगाती है, इसका अर्थ बुद्धि में रहना चाहिए। इन बातों को कोई जवान से क्यों नहीं समझा सकते हैं, समझा सकते हैं। कि आत्मा जब कलयुग के अंत में घोर अत्यंत नींद में सो जाती है, बाहर की दुनिया का सारा ज्ञान करेंगे, भौतिक ज्ञान, अपने अंदर का कोई भी ज्ञान नहीं। कहते तो है कि हम सब एक्टर हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच के, परंतु बात बतलाते हैं वो एक्टर कैसा जो अपने एक्ट को ही भूल जाए। 84 जन्मों में 84 के चक्र में क्या क्या पाठ बजाया, जानना तो चाहिए ना। आप देखें ये जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनसे पूछते हैं तुम इनका अर्थ समझाओ, समझा सकती हो बेटा। तो सिनेमा में भी जो गीत गाते हैं ना, गीतकार गीत बनाते हैं, भाव में आकर के बनाते हैं ना, परंतु इसका अर्थ समझा सकती हो। जा सजनिया जा, कौन बोला? वास्तव में घोर ज्ञान अंधकार की रात्रि में जिसे महाशिवरात्रि कहते हैं, वो भगवान बाप या करके हम आत्मा रूपी सजनियों को जगाते हैं। ये बोला बच्ची यहाँ आओ, समझाना शुरू करो। देखे तो बाबा भी समझाते रहेंगे कि तुम बच्चों को इनका अर्थ कैसे बुद्धि में रखने दे, और समझाना है क्योंकि बहुत सहज से सहजी है ये भी, तो तुम आ करके समझाओ, फिर मैं तुमको मदद करूंगा। जो समझते हैं कि हम समझा सकते हैं, समझदार हैं, क्योंकि बेसमझ तो नहीं समझा सकेंगे। जो समझदार हैं वो ही सहज समझते हैं कि हम समझा सकते हैं, तो गद्दी पर आदर है। ये मुट्ठी नहीं जानती, उबासी दे रही है। अरे तो दुनिया में तो सब बेसब है। जो रात को बाबा ने बात निकाली कि कैसे समझना है और कैसे समझाना है, और समझने समझाने के लिए कोई गीत गाना भी नहीं है। गीत बजाना भी नहीं है, क्योंकि इन गीतों में समझ ही है ड्रामा की। शक्ति चक्र रूपी ड्रामा है ना, इसने जो 500-700 करोड़ मनुष्य पार्टधारी है वो कैसे कैसे किस किस युग में पार्ट बजाते हैं, वो सारा बता रहे। बाबा के पास आकर के थोड़ा ही समझे तो मैं भी उनको मदद करूंगा, और जो ये समझ है तो समझा नहीं सकते हैं वो भी समझ आएगी। इस बच्ची को हिम्मत जो है ना, वो जंगली तोता तो नहीं है ना, तोता भी बनना है नहीं तो ये बात के ग्रंथ से असर नहीं पड़ेगा, असर हो जाएगा। असर पड़ जाए ये जंगली पैरेट, ह्यूमन पैरेट, ये तो कुछ समझा ही नहीं सकते। तो उसका नतीजा क्या होता है? भले बाप के तो बनते हैं, वर्षा को पाएंगे, भले बाबा कहते हैं कि वर्षा भी पूरा पाएंगे, क्योंकि पूरे सरेंडर हैं। तो बाबा को अपना पूरा वर्षा देते हैं, तन का, मन का, धन का, गरीब में बर्ता लेते। बाबा ने समझाया ना कि यही बच्ची है फिर जिसने कल ही पूछा, बाप की संतान कितना है, कितना है? जवाब दिया, बोला 8। उनकी ब्राह्मणी बोलने लगी, तुम तो बोलती भूलती हो, आठ नहीं सात। तो उस बच्ची ने बोला, नहीं आठ। अभी मैं तो समझ गया, वो बच्ची कहती है ये लायक है, ये लायक कहती है, वो मुझती है इनके बोलने से। तो बरूबर बारिश तो बनाना है ना, बड़ी तो चढ़ना है ना, क्योंकि बाप के बच्चे बाप के ऊपर बलि करते हैं। काशी में काशी काली करवट, काशी करवट खाते हैं ना, सब थोड़े ही खा लेंगे। देखो ईश्वरीय नाली जो है, ईश्वरीय नाली जी को इस दुनिया के ये जंगली जानवर नहीं समझते है। गीता में भी लिखा हुआ है, मैं जब आता हूँ तो मूढ़मति मनुष्य मेरे को पहचान नहीं पाते हैं ये मनुष्य, परंतु है जानवरों में शरीर। ये तो बच्ची समझ गई है कि इनको भारत बनाने से ये हमको इस कार्यक्रम में किस जन्म का वर्षा दे देंगे, दे सकते आओ तो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। भगवान बात ही दे सकता है, सुख का सागर है तो सुख की दुनिया का वर्षा देगा ना। द्वापर कलयुग है ये तो दुख की दुनिया, द्वापर माने ही दोपुर, दो दो राज्य, दो दो धर्म, दो से चार, चार से आठ। तो मुर्खताओं तो जरूर होती है, झगड़े की दुनिया है, उसमें दुखी ही दुख है। तो बाप सुख का सागर है, ऐसी दुनिया स्थापन करते हैं जहाँ सुख ही सुख होगा। जैसे दिन में सूरज निकलता है तो क्या होता है, चारों ओर रोशनी ही रोशनी होती है, रात में चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो जाता है। तो सतयुग त्रेता 21 जन्म, ये है भगवान की बनाई हुई देवताओं की दुनिया जहाँ सब सुख में रहते हैं। ऐसा सुख भगवान के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता, कोई भी धर्म पिता नहीं दे सकता, न इब्राहिम न बुद्ध न क्राइस्ट न गुरु नानक, कोई नहीं दे सकता। बाप याद है सदैव का सनातन धर्म स्थापन करते हैं, भले द्वापर कलयुग में मनुष्य जाकर के बलि करते हैं, काशी करवट खाते हैं, या शरण में जाकर पड़ते हैं। जैसे अरविंद घोष आश्रम एक आनंदपुर, यहाँ ऐसे ऐसे हैं जहाँ जाकर के बैठ
जाते हैं,
वहां जा करके रहते हैं, सब कुछ ले जाकर रहते हैं, परंतु वहां रिटर्न में तो किसी को कुछ मिलता ही नहीं। क्या मिलता है? धूल भी नहीं मिलता, टाइम भी नहीं। समझा ना? तो सन्यासी लोग भी गाते रहते हैं, सदगुरु निंदक ठहर न पा। अरे तुम अपना ही घर घाट छोड़ करके आए हो, घर बार छोड़ करके आए, जमीन जायदाद छोड़ के आए, तुम्हारे पास कौन सा ठौर है? ये तो सदगुरु की बात है। सदगुरु एक ही परम पिता परमात्मा है, एक सदगुरु निराकार कहा जाता है, वो निराकार ही सृष्टि पर आकर के साकार बनते हैं। वो आते हैं परम धाम से, जिसके लिए गीता में कहा है न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुंचता, अग्नि का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, सब धाम परम मम यद्यत्वाद निवर्तन्ते। यहां ईश्वर के धाम में पहुंच करके कोई भी इस पुरानी दुखदाई दुनिया में वापस नहीं आता। सद्धाम परम मम वो मेरा परम धाम है। अज्ञान अंधकार में आकर के कलयुग में कहने लग पड़ते परमात्मा सर्वव्यापी, वो तो कण कण में है, गले गले में है। अब भगवान बापी सच्ची पर मौजूद है, कण कण में, हमारे में, तुम्हारे में, तो सुख देता होगा कि दुख देता होगा? है सुखदाता होना चाहिए ना, परंतु सुख की भी तो छाए भी नहीं। अब देखो यहां तो अभी बाप आया हुआ है, बेहद का बाप, सर्व मनुष्य आत्माओं का बाप, मनुष्यों को पढ़ाने आएगा या जानवरों को पढ़ाने आएगा? मनुष्यों को पढ़ाने आएगा। इतनी बड़ी शक्ति में मनुष्य ही जाति एक ऐसी है जो बुद्धिमान प्राणी है, ज्ञान बुद्धि का विषय है। अज्ञान अंधकार में आकर के बोल दिया कि भगवान कूकर सूकर का अवतार ले लेते, कूकर सूकर का अवतार नहीं लेते, लेकिन मनुष्य आत्मा ही ऐसे कर्म करने लग पड़ती है जिन्हें कूकर सूकर जैसा कहा जाता है। से कह देते राम ने, भगवान ने क्या किया? राम बंदरों की सेना ली। अरे बंदरों की सेना नहीं ली, बंदर जैसे जो महाविकारी है ऐसे विकारी मनुष्यों की सेना ली। तो बाप जो यहाँ आए हैं वो समझाते हैं, इसलिए गाया जाता है तेरे ऊपर बजा भी जाऊं बारी जाओ। बहुत बच्चे हैं जो इन बातों का तो समझते हैं। अरे हमारी ब्राह्मणी भी नहीं जानती है, बहुत कोई कोई जो बुद्धू है वो भी इतना नहीं जानती है। समझाना होता है जैसे बाप बच्चे के ऊपर बलि करते हैं अपनी सारी संपत्ति जीवन भर की कमाई को ही इसको सौंप देते हैं, बच्चों को सौंप देते हैं। तो वैसे तो यहाँ क्या है, ये बाप बच्चों के ऊपर बलि करते हैं नंबर वार को साफ होता, क्योंकि यहाँ तो नई बात है। तो बाप बनता देते हैं, बेहद का बाप जरूर बेहद सुख का बनता देंगे। हिसाब ही ऐसा है कि इसी जन्म में तुम बलि चढ़ो, फिर इसी जन्म के लिए बाप बलि कर जाता है। ऐसे तो कोई होता ही नहीं है, न कोई बलि करते हैं, न कोई इसी जन्म का बनता दे सकते हैं। तो बच्चा कभी कोई बाप के ऊपर बलि करता भी नहीं है, बाप कभी करते हैं बच्चे चल नहीं सकते हैं। यानी वो कायदा है ही है, इस ईश्वर का कायदा। जाते भी ऐसे ही है, तेरे ऊपर वारी जाऊं बलिहारी जाऊं, मेरे तो आप एक दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में। तो देखो बलि कैसे करते हैं, बस दूसरा कोई नहीं है एकदम, न मामा न काका न चाचा न बाबा न कुछ भी, जो मेरा है ये मेरा हुआ ना, मेरा शरीर, मेरी माता, मेरे पिता, काका, चाचा, मामा, गुरु गुसाई, किसका हुआ? आत्मा का हुआ या शरीर का हुआ? बोलते हैं हम आपको छोड़े के निराकार के ऊपर बन सकते, वो बाप है तो बरोबर वो तो जरूर सत्य होता है, इसकी जन्म का वर्षा देंगे। अभी पूरा बलि करेंगे वो अपने रूपी दर्पण में फोड़ फोड़ करके देख रहे हैं, हम पूरे बलि करने हुए हैं। बोलते तो है हम संपूर्ण समर्पण दे, ये हुई दिल से बलि करने की बात। जब त्योहार में रहते हुए दिल देखो तो बंदर कितना है, व्यस्त व्यवहार में रहते हुए अपने व्यस्त धर्म का पालन करते हुए तुमको बलि कर दिया। देखो अब ये बुरी बात हो गई, तो प्रश्न उठता है ये कैसे। वो बोलते हैं कि व्यवहार में भी रहो, व्यस्त में भी रहो और कमल फूल के समान पवित्र भी रहो, रहते हुए बुद्धि में ये संभालो। अभी 84 जन्म पूरा होता है और ये शरीर भी तो छोड़ना है, उसके साथ सब कुछ छोड़ना पड़े। हम तो बाबा के हो गए, हम उनके हो गए, ये सभी जो भी है मामा काका बाबा जरूर है तुम्हें, मैं इनकी संभाल कर रहा हूं, बच्चों वगैरह सब की संभाल कर सकता हूं, परंतु सभी कब्र साफ कब दाखिल होने वाले हैं, क्योंकि अब ये नाटक पूरा होता है। कौन बोलता है? भगवान बाप ब्रह्मा के तन से बोलते हैं। बच्चे अभी सच्ची रूपी नाटक पूरा होता है, एक तरफ इस सच्ची पर भगवान बाप आते हैं, नई सच्ची के लिए नया ब्राह्मणों का संगठन बनाते हैं, और दूसरी ओर उसी समय नेगेटिविक एनर्जी तैयार होने लगती है।
इसलिए मूर्ति में
दोनों ही मूर्तियां दिखाई, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करने वाली मूर्ति और फिर जस्ट अपोजिट में शंकर द्वारा पुरानी दुखदायी आसुरी सृष्टि का विनाश। किसके साथ निशानी लगी हुई है बाबा विनाश की है? ब्रह्मा के साथ नहीं, शंकर के साथ ये विनाश की निशानी लगी हुई है। क्या? हर हर बम बम। तो जरूर बमों के धमाकों से सारी दुनिया नष्ट कर मारेगा। इसलिए जो ब्रह्मा द्वारा नई शक्ति स्थापन हुई है उस नई शक्ति की प्रत्यक्षता के लिए आसुरी शक्ति का विनाश, धर्म संस्थापनाथाय विनाशाय च दुष्कृताम्, सब पापी बन गए। 36-68 की वाणी का दूसरा दिन वो भी नाटक पूरा होता है। हम तो जाएंगे बाबा के पास, कहाँ जाएंगे? बाबा का घर कहाँ है? शिव बाबा उनका घर कहाँ है? अभी बताया, गीता में ही बताया, जहाँ जाकर के आत्माएं वापस इस लोक में नहीं आती है, इस पुरानी दुनिया में दुखदायी दुनिया में नहीं आती है। कहाँ आती है? नई सत्य की दुनिया में आती है। वो मेरा परम धन है, सब बच्चों को अपने धाम में वापस ले जाऊंगा, तो पवित्र बनाकर ले जाऊंगा या पवित्र आत्माओं को ले जाऊंगा? पवित्र आत्माओं को ले जाऊंगा। हम तो जाएंगे बाबा के पास वर्षा पानी के लिए। कौन सा वर्षा? सतयुग और त्रेता का देवता ही जन्मों का है, किस जन्म का वर्षा पाने के लिए? वहाँ सतयुग त्रेता में किसका राज्य होता है? सतयुग में नारायण का राज्य होता है, त्रेता में राम का राज्य होता है। इस वर्षे को पाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। कौन सा पुरुषार्थ करते हैं? उनको याद करते हैं जिसके ऊपर बलि चढ़े। और जो बलि चढ़े जिसका एम जहां हमको मिलना है सतयुग का, वो हमको याद रखे। तो साफ कह देते हैं कि अंतिम जन्म ग्रस्त विवाद में रहना है, परंतु वहां रहते हुए तुम बलि चढ़ो कि बाबा सब कुछ आपने ही हमको दिया हुआ, तो सब कुछ आपका है। तो मेरे बाप ने सब कुछ दिया हुआ है और संभाल रहे हैं कृष्टि होकर के, परंतु वो सच्ची बात तो नहीं है ना? कहने मात्र है, हम ट्रस्टी है। जो अगर कोई ले ले या अनायास ही दिवाला निकल जाए, या बच्चा मरे या रोने लग पड़ते हैं, क्यों? जब ट्रस्टी है तो रोने क्यों लग पड़े? यहाँ कभी भी किसी का ट्रस्टी वगैरह में कोई भी मरे तो तुम बच्चों को रोना नहीं है, क्योंकि वो तो धन धन धाम स्वर्ग परिवार सब कुछ बाप को दे दिया, वो पराई चीजों पे जिसकी थी उनको दे दिया, फिर रोने की क्या बता? रोया तो खोया, यानी फेल हो गया, तो फिर दे दिया। अरे धरती है ना, तीनों मिट्टी है, निकल दी है, उनको ही ले लिया हम उनके डायरेक्शन के अनुसार अपने व्यवहार को पवित्र रहते हुए संभाले। वो भी अकट होती है तो हम श्रीमत लेते हैं, पूछते हैं क्या लेते हैं, है श्रीमत लेते हैं। श्रीमत का क्या कहेंगे है, कोई यादगार है श्रीमत की नहीं? श्रीमत भगवत गीता यादगार है, दुनिया का ज्ञान का सर्वोच्च ग्रंथ। सुनाई किसने? भगवान बाप ने सुनाई। गलती इतनी की दिए की है कि बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया, कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया। अरे कृष्ण बच्चा को सोना कला संपूर्ण कहा जाता है, सर्वोण संपन्न कहा जाता है। भगवान कलाओं में बंधता है क्या? तो कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कहा जाता है, जो कलाओं से परे है। जैसे सूर्य, सूर्य कलाओं में बांधा जाता है या चंद्रमा कलाओं में बांधा जाता है? चंद्रमा बांधा जाता है, इसलिए कहते हैं कृष्ण चंद्र रामचंद्र। ये देवताओं की आत्माएं हैं जो कलाओं में बांधी जाती है। भगवान को कलाओं में नहीं बांधा जा सकता, भगवान तो सुधा कला संपूर्ण बनाने वाला है। नर को क्या बनाता है? नारायण बनाता है। तो बोला श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान का गाया हुआ गीत है, उस गीत में से श्रीमत लेनी है। श्री मन से मत माने अकल, अकल भ्रष्ट से लेंगे या श्रेष्ठ से लेंगे? श्रेष्ठ से ही अकल ली जाती। पूछ रहे हैं तो देखो कैसे समझाते हैं ना, ऐसे तो नहीं कहते हैं ले आओ तुम्हारी जमीन मकान अगरम बगरम यहाँ आकर के रख दो, वो नहीं कहते। जैसे अरविंद घोष में जाते हैं तो घर बार ले जा करके वहां रहते, बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हैं। भारत तो कहते हैं तुम अपना संभालो, रस्सी बनकर के संभालो, ऐसे समझो कि ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। कोई अटक होती है तो श्रीमत लेते रहो। देखो सब कुछ छोड़ छाड़ अगर देवे तो वो भी तो एक प्रकार का संन्यास हुआ ना, यहाँ से उठ करके वहां जाकर के बैठ गए। तुमको वो संन्यास नहीं करना है, तुमको तो इस दुनिया से ही नई दुनिया में जाना है। क्या कहा है? वो लोग कोई भी ये नहीं जानते हैं कि हमको कोई नई दुनिया में जाना है। कितने सत्संग होते रहते हैं, सत्संग में जाने वाले कोई ये समझते हैं कि गुरुजी हमको नई दुनिया में नहीं जाएंगे? ये तो सिर्फ तुम यहां जानते हो कि बरोबर अभी हम नई दुनिया में जाना है। रहते हुए क्योंकि समझ की बात है, यहाँ बाप के पास कहाँ आकर के सब बैठेंगे? यहाँ आकर के बैठने की प्रति कोई बात नहीं है। बैठने की बात होती है पिछाड़ी में, क्या करा कब पिछाड़ी में, जब हर बम बम फका के छूटते हैं उस समय तुम बच्चे कहाँ जाकर के बैठेंगे, बाप के घर में बैठेंगे। कहाँ होगा बाप का घर? तुम बच्चे परम नाम को इस धरती पर उतार देंगे, वहाँ माहौल ऐसा बना हुआ होगा जहाँ सभी आत्मा रूपी बच्चे आत्म की स्थिति में बैठे होंगे। कोई भी देवघर में नहीं होगा, मेरा मामा, मेरा चाचा, काका, नाना, ताऊ, कुछ भी नहीं। मैं आत्मा और मेरा बाप। बीमार होता है तो फिर भागते हैं, कहाँ बाप के पास आकर भागते हैं। यहाँ बाप के पास आकर के रहते हैं, यहाँ मैंने कहा दूर फैलने वाले होंगे या करके रहेंगे, सब रहेंगे 500-700 करोड़, कितने रहेंगे? तो पिछाड़ी में यहाँ आकर के रहते हैं सेफ्टी के लिए, क्या कहा? क्या दुनिया में और कहीं सेफ्टी नहीं होगी? बाप के पास ही सेफ्टी होगी। तब तो मुसलमान लोग भी कहते हैं कि कयामत के समय में भगवान के बंदे बड़े आराम से रहेंगे। तो भगवान के पास रहेंगे तो आराम से तो रहेंगे, वहां दुनिया में तो मारा मारी, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो जब समय आएगा झट दिखाई पड़ेगा, ये सार के मौत का समय आ गया। और तुम बच्चों को ही मालूम है कि ये विनाश होने वाला है, दूसरे बच्चों को तो मालूम ही नहीं है ये दुनिया का पूरा पूरा विनाश होने वाला है। कुछ भी नहीं बचेगा पुरानी दुनिया का, तो समझो लड़ाई फिर लगेगी, तो भी वो अपना हाय हाय करते रहेंगे, भागते रहेंगे घर से उधर। तुम बच्चों को तो मालूम है कि वो समय आ गया, कौन सा समय? दुनिया के विनाश का समय आ गया, उनके कुछ पहले ही तुम यहाँ भाग आ रही है। क्या पहले ही भाग जाएंगे बाप के पास कि जब विनाश शुरू हो जाएगा तब जानेंगे? क्योंकि बाबा ने समझाया कि गाड़ी में तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहेगी, बड़ा नजदीक साक्षात्कार होता है। ये होता रहेगा, वो होता रहेगा, तो तुम यहाँ आकर के रहेंगे। शुरुआत की बात और इन पिछाड़ी में भी होती रहती है, जो आज में जो अंत में कहते हैं ना, जो तुमने देखा तो हमने नहीं देखा, जो वो देखा वो नया नहीं देखा, क्योंकि बातें हो गई। वो जो नहीं उन्हें देखा तो भागवत की बात नहीं देखा तो होगा तो ज्ञान की बात है ना समझने की। बाबा भी समझते हैं कि एक तो बड़ा सहज बिल्कुल ही से, तो बच्ची को कहते हैं कि गीत बजाती रहो और
निरीक्षण ज्ञान के अर्थ भी समझाते हो। किसी कहे तो भले सारी गीत का अर्थ तब तक हो, जैसे कि लाइन निकलती है फिर बाबा उसका अर्थ करने लग पड़ते, क्योंकि अर्थ करने में कोई लज्जा तो नहीं करनी चाहिए। वो जो सन्यासी लोग हैं जब अपने फादर्स को बैठ करके शास्त्रों की वाणी चलाते हैं तो मुख से चलाते हैं, क्योंकि याद तो करते हैं, पढ़ते तो नहीं, वेद में ये लिखा हुआ है, फलाने शास्त्र में ये लिखा हुआ है, भाषण करते समय वो कोई गीता नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। जैसे देखो वहां चेन्नई आनंद जी आते हैं तो कोई गीता लेकर के नहीं बैठते, उनको तो याद रहता है कि फलाने अध्याय का आज हम भाषण करें या फलाने श्लोक का हम ये व्याख्या करते हैं, तो कोई शास्त्र हाथ में नहीं लेते हैं। तो यहाँ और एक शहर है, तुमको तो शास्त्र याद पड़ते हैं, तुमको तो बाप याद पड़ता है कि बाप ने हमको ये समझाया, क्यों बाबा जी, क्योंकि ये तो तुम लोग समझ गए हो कि हम शिव वंशी हैं। क्या कहा है संसार में खास करके भारत में तीन संप्रदाय बहुत प्रसिद्ध हो गए, कौन कौन, शैव समाजी, वैष्णवपंथी और ब्रह्म समाजी। तो तुम लोग तो समझ गए हो कि हम कौन से वंश के हैं, हम शिववंशी हैं, परम पिता परमात्मा शिव केवल तीन तो सब है, क्या बात होगी है, परम पिता परमात्मा के शिववंशी तो सब हैं 500 शास्त्रों, लेकिन हम अभी हम चयन कर रहे हैं, सारों को चयन कर रहे हैं। आज सुबह को बैठे थे हम शिववंशी हैं, ये भी तो सबको मालूम होना चाहिए ना, तो वहां ऊपर में लिख नहीं है परम पिता परमात्मा शिववंशी, इसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, देखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो देखो ईश्वरीय यानी ईश्वर हो गया परम पिता परमात्मा, वो ईश्वरी हमको पढ़ाते हैं ब्रह्मा का किसी भी बात हो जाए, इसलिए हम चयन कर रहे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो कुछ अपना लेटर फॉर्म से बनाते हैं उसको भी हम चयन नहीं कर सकते हैं, सबके साथ कैंसर की वाणी का तीसरा पेज जानते हैं कि विश्व का मालिक है, जो कलेक्शन होती जाएगी करते रहेंगे, क्योंकि नीचे भी जब हम लोग लिखते हैं ये है राजस्व अश्वमेध अविनाशी यज्ञ, राजस्व का मतलब ही है राजयोग सिद्ध करके, क्योंकि राजा ही दिलाने वाला राजस्व अश्वमेध, अश्व माने ये जो मनरूपी घोड़ा है उसको स्वाहा करने वाले हैं, मन रूपी घोड़े को मार देने वाले हैं, अविनाशी
रुद्र ज्ञान यज्ञ का विनाश नहीं होता है। अरे सत्युग त्रेता में ये बिना ये ज्ञान रहेगा फिर क्यों कहा अविनाशी? इसलिए कहा भले ये ज्ञान नहीं रहेगा विस्तार में परंतु आत्माएं जो है देवात्माएं ज्ञान के सार स्वरूप में ज्योतिबिंद रूप में अपन को आत्मा समझ करके बैठी होंगी। इसलिए ज्ञान का सार रहेगा तो अविनाशी हुआ या अविनाशी हुआ अविनाशी। और रुद्र ज्ञान यदि है रुद्र कहा जाता है रौद्र रूप धारण करने वाले को विकराल रूप धारण करने वाले को। कब विकराल रूप धारण करते हैं? आज में भी विकराल रूप धारण किया था आज तो अंत में भी विकराल रूप धारण करते हैं। और ये ज्ञान का यज्ञ है कोई मेटेरियल यज्ञ नहीं है फिर भी अभी सिर्फ ज्ञान यज्ञ नहीं लिखना होता है। अभी वो भी लिखते हैं राजस्व सुमेध विनाशी युद्ध ज्ञान फिर वहां तो नीचे लिखते हैं कि सड़े जन्म सब अधिकार दैवी स्वराज्य पाने के लिए आओ। ये हुआ है माध्यम तुम्हारा उद्देश्य क्या है? माध्यम है हमारा ईश्वरीय जन्म सब अधिकार है नर से नारायण जैसा मनुष्य से देव का बन वो यूनिवर्स चीज होती है मनुष्यों की बोली हुई। कोई डॉक्टर बनाते हैं कोई इंजीनियर बनाते हैं कोई क्या बनाते हैं यहाँ तो भगवान आकर के हैं पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले अर्जुनों को नर से नारायण हो ये हुआ तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट जीवन का। हिंदी में ऐसे कहते हैं ना तुम्हारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य अपने बाप से सचिवी स्वराज का जन्म कर अधिकार पाना अच्छी तरह से। और ये यदि भी 5000 वर्ष पहले वहां पे के स्थापन किया हुआ है क्या पहले भी स्थापन किया था? महाभारत युद्ध हुए कितने साल हुए बताते? 5000 साल बताते। अंतर इतना दब दिया है उसको द्वापर के अंत में ठोक दिया। अब द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान आकर के महाभारत युद्ध कराएंगे। द्वापर में तो 8 कलाएं होती हैं 16 कलाएं तो होती ही नहीं। वास्तव में ये कलयुग का अंत की बात है। क्रिश्चियंस भी समझते हैं मानते हैं कि क्राइस्ट से 2500 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था भगवान ने ही स्थापन किया। वो भी लिख सकते हैं और कोई कोई लिखा हुआ है और बनना भी हिंदी में है। अभी इंग्लिश को कम करते जाते हैं ये कच्छ फारस हिंदी में तो वो और ही खुश होंगे। वहां भाषण भी हिंदी में समझाते हैं कोई इंग्लिश में तो समझाते नहीं है। अच्छा तुम भी हिंदी में समझाएंगे ना तो हिंदी में जानते हैं तो उनको इंग्लिश में समझाएगा। इंग्लिश तो इंटरनेशनल भाषा है सारे विश्व में चलती है। हाँ अभी तो भी पीस की लाइन में जाए गीत बजा जान से दुनिया जाग नरुआ आया
जीत गए सब पाप पाप पुराने।
अरे
ये क्या सारी बीत बात बीत गई पुरानी बात। देखो मैं इशारा भी लेता जाता हूँ कि पुरानी बात है, लॉन्ग टाइम है वो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो पास हो गया बीत गया। बाबा अगर हम सब आत्माओं से कहते थे आत्माओं अपना वही उगाया है और नया खरीदने का युग आने वाला है और तुम भूल सो रहे हो। अभी जागो, अभी कलयुग तो खत्म ही होने वाला है और सतयुग आने वाला है। अब तुम जाग जाओ, पुरानी दुनिया अक्षर पूरा करते रहो, कल भी पुरानी दुनिया खत्म हो गई, सतवी नई दुनिया आ रही है। नहीं तो समझेंगे कि 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ था तो कब हुआ था, द्वापर के अंत में दिखाई देते। अरे वहां पूरी पुरानी दुनिया थोड़ी होती है, पुरानी दुनिया द्वापर में होती है या कलयुग में होती है, कलयुग में पूरे अक्षर लिखना चाहिए। कलयुग भी पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और सती भी नई दुनिया आ रही है। तो गीत में आया तो देखो कौन सी पुरानी दुनिया बीत गई। कलयुग में तुम राम राज्य में चलते थे, अरे राम राज्य नहीं, ये सदर्शन ये सचिवी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी द्वापर में वैश्यवंशी और कलयुग में सार सूर्यवंशी। जैसे तुलसीदास ने भी 500 साल पहले लिख दिया वर्ण शंकर सब है, क्या कोई ब्राह्मण नहीं रहा, कोई क्षत्रिय नहीं रहा, सब क्या हो गए वर्ण शंकर हो, शुद्ध हो। तो देखो ये बातें बताओ बच्चे क्या बीत गया। तो सब संबंधी है और सारी दुनिया उसको भूल जाओ और आत्मिक स्थिति में होकर के अपने शांति नाम से गुलाम को याद करो। अच्छा चलो ये भी बहुत अच्छा बोला, चलो बैठो याद में बैठो। ओके